نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد. 22 رجب کو مسلمانوں میں سے ایک طبقہ کنڈے کی نیاز کرتا ہے. کنڈے ان برتن کو کہتے ہیں جو مٹی کے ہوں, اس میں خاص انداز کے کھانے پکائے جاتے ہیں, اور اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, جو امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پر پوتے ہیں, ان کی نیاز کے طور پر, ان کے ایصال و ثواب کے لیے اس دن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس میں خاص قسم کا کھانا بھی بنایا جاتا ہے, کچھ حلوہ وغیرہ بھر کے روٹیاں بنائی جاتی ہیں, پوریاں بنائی جاتی ہیں, جو خاص ایک اس کا فارم ہے, تو اس کو برکت حاصل کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے, ایصال و ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. شیعوں کے ہاں بھی اس کا اہتمام ہے, ظاہری بات ہے, اس لیے کہ وہ امام جعفر صادق کو اپنا امام قرار دیتے ہیں. ان کے ہاں امام کا تصور مختلف ہے, ہمارے ہاں بھی ان کو امام سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں امام سے مراد جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں, مسلمانوں کے رہنما ہوں. یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ امام جعفر صادق یہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے. بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 83 سال جب ہجرت کے گزر گئے تب, یہ بات سے پتہ چلتا ہے کہ 80 سال. بہرحال مدینہ ہی میں آپ رہے اور 63 سال تقریباً آپ کی عمر مبارک ہوئی. رجب کی 22 تاریخ سے ان کا پیدائش کا یا انتقال کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ آپ کا انتقال مدینہ میں 15 شوال کو ہوا. کنڈوں کے کرنے کے بارے میں یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس دن امام جعفر صادق کو بہت اونچا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا, ولایت کبریٰ وغیرہ. اب ظاہری بات ہے اس کی دلیل تو حاصل کرنا آسان نہیں ہے سند کے ساتھ, اور خود امام صاحب سے یا ان کے بعد دیگر ائمہ سے اس 22 تاریخ کا اہتمام کرنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت نہیں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی محض نیاز کی غرض سے یا ایصال و ثواب کی غرض سے, نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کریں, کھانے پینے کی چیز ہو, یا مال پیسے کی صورت میں ہو, یا کوئی جانور وغیرہ اللہ کی راہ میں دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اس کا ثواب اس بزرگ کو یا اس شخصیت کو پہنچانا چاہیں, تو یہ ایصال و ثواب کی جو صورت ہے اس سے اتفاق ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ایسا کرنا جائز ہے. اسی کو نیاز کہہ دیتے ہیں جب بڑے بزرگوں کے لیے ایسا کیا جائے, کہ نیاز مندانہ اپنا ایصال و ثواب ان تک پیش کیا جا رہا ہے, ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جاتا ہے, غیر اللہ کے نام پر نہیں, ان بزرگوں کے نام پر نہیں کیا جاتا, ورنہ یہ شرک اور بدعت ہوگا. یہ اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن اس کا ثواب ان تک پہنچایا جاتا ہے, جیسے کوئی شخص کوئی کھانا پکا کے غریبوں کو دے اور کہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے, تو ایسا کرنا سب کے نزدیک جائز ہے. لیکن اب یہ ایک دن کا تعین جو کیا ہے, اس سے بعض اوقات بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ 22 تاریخ 22 رجب کو چونکہ امام صاحب کی پیدائش اور ولادت دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک من گھڑت سی کہانی ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ وہ روایت ٹھیک نہیں, تو خود بریلوی مکتبہ فکر کے جو جید علماء ہیں وہ بھی اس کو نہیں قبول کرتے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک منظوم سی کہانی جو بنا دی منشی جمیل احمد نے, کہ اس میں ایک لکڑہارے کا واقعہ ہے جو مدینہ میں بڑی غربت کی زندگی گزار رہا تھا, بیوی بچے تھے, اکثر فاقہ رہتا تھا, کئی سال تک وہ دھکے کھاتا رہا, और फ़क्र फ़ाका से उसको कभी आसानी न मिल पाई, छुटकारा न हुआ। तो एक दिन ये लकड़हारा एक वज़ीर के महल के पास से गुज़रा, तो उसकी बीवी मदीने में वज़ीर की नौकरी करती थी। वो एक दिन झाड़ू दे रही थी कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से गुज़रे और वज़ीर के महल के सामने खड़े होकर अपने साथियों से पूछते हैं कि आज कौन सी तारीख़ है। उन्होंने जवाब दिया कि आज रजब की 22 तारीख़ है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर किसी हाजतमंद की हाजत पूरी ना होती हो या किसी शख्स को बहुत बड़ी मुश्किल लाहक हो, तो उसको अगर कोई रास्ता नज़र ना आए तो उसको चाहिए कि बाज़ार से नए कूंडे लाए और उसमें हलवा और पूरियाँ वगैरह भर कर मेरे नाम पर, यानी इमाम जाफर सादिक के नाम पर फातिहा पढ़े, फिर मेरे वसीले से दुआ करे, तो उसकी ये हाजत अल्लाह सुबहान व तआला दूर फरमा देंगे। और क़यामत के दिन अगर ऐसा ना हो तो वो मेरा दामन पकड़ सकता है। अब ये वाक़या उन्होंने बयान किया और उसमें फिर और मज़ीद तफसीलात कि उसने कबूल यकीन नहीं किया तो बड़ा उसका नुकसान हो गया, और फिर किसी और को बताया उसने कबूल कर लिया तो उसका रुजू हो गया। बहरहाल इसके अंदर काफ़ी एक कहानी है कि मुश्किलात आईं क्योंकि उस पर एतमाद नहीं किया था इस बात पर। तो ये एक मनगढ़ंत सी कहानी है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। अहले तशय्यो भी 22 रजब को अहतमाम करते हैं इन चीज़ों का, और सुन्नियों में से बरेलवी मकतब फ़िक्र के अक्सर लोग इसको जायज़ भी करार देते हैं और उसको बाकायदा बड़े अहतमाम से मनाते भी हैं। देवबंदी मकतब फ़िक्र में और सलफ़ी अहले हदीस गैर मुकल्लदीन जो उलमा है उनके नज़दीक इस दिन की कोई असल नहीं है बल्कि ये एक बिदत है। और उसकी एक वजह ये भी है कि 22 रजब के बारे में ये यकीनी बात है कि ये हज़रत अमीर मुआविया रहमतुल्लाहि अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि क्योंकि सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन में से हैं और इसी तरीके से यानी वही लिखने वालों में से हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादरी नस्बती भी हैं, तो बहुत ऊँचे मकाम के सहाबी हैं। ये असल में इमाम हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल का दिन है, इस दिन उनकी वफात हुई। चुनाचे हमारे लिए इस दिन की ऐसी कोई ख़ास अहमियत कि जिसमें खूब खुशी मनाई जाए किसी भी दर्जे में, ये अहले तसन्नुन के यहाँ या सुन्नी लोगों के यहाँ ये बात जचती नहीं। इसके लिए कोई और दिन भी बनाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल बरेलवी हजरात चूँकि इसकी गुंजाइश रखते हैं और उसको बड़े अहतमाम से मनाते हैं, लेकिन उनके भी जो उलमा हैं ज़ी इल्म लोग वो यही फरमाते हैं कि इस दिन को लाजिम न समझें, इस ख़ास हैयत से चीज़ों को पकाना, इस ख़ास किस्म के कुंडों में और ख़ास किस्म के बर्तनों ही में इनको बनाकर खिलाना और इसके अलावा न खिलाया जाए तो, यानी इसके अलावा किया जाए तो नहीं अदा होगा, वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इन चीज़ों को लाजिम समझना नाजायज़ है उनके नज़दीक भी। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ास किस्म की नियाज है तो किसी ख़ास बुज़ुर्ग के नाम पर है तो वो उसी किस्म के लोग खा सकते हैं, मिसाल के तौर पर हज़रत फ़ातिमा के नाम पर होगी तो खाली औरतें खा सकती हैं, मर्द नहीं खा सकते। इस तरह की जो क़ुयूद उसमें लगाई गई हैं और बढ़ाई गई हैं कंडीशंस, और ख़ास दिनों को मुतय्यन कर दिया गया है और उसके अलावा को गलत और जो न करे उसको भी गलत करार देना, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल ख़ुद बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनके नज़दीक भी बिदत और नाजायज़ और गुमराही की बातें हैं। लेकिन वो उसूली तौर पर किसी के भी नाम का ईसालो सवाब करने को चूंके शरीयत ने जायज़ करार दिया है उस बुनियाद पर इस दिन को जायज़ करार देते हैं, और जैसा बताया कि इसको बिदत करार देते हैं और नाजायज़। बहरहाल चूंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर ऊंचे पैमाने पर की जाने लगी है, तो बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा को इसमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि क्या इसका करना इतना ही अहम है कि इस ख़ास दिन ही को मुतय्यन कर दिया जाए, जबकि इसमें इस बात का इम्कान भी है कि ये हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खुशी में अहले तशय्यो की तरफ से ईजाद करदा हो, जैसा कि बाज़ लोग दावा करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात, इस तरह की चीज़ें तहकीक तो नहीं की जा सकती, यकीनी बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जब एक चीज़ हमारे लिए लाजिम नहीं है तो हम उसको क्यों इतने अहतमाम से करें और उम्मत में इफ्तराक और इंतशार की चीज़ें फैलाएं। ज़रूरी है कि हम हर उस चीज़ को करें कि जिसमें हम यूनिक हो जाएं, मुख्तलिफ हो जाएं, बजाय इसके अगर ये एहतमाम हो कि उम्मत को जोड़ने के लिए वही काम किए जाएं कि जो हमारे शायन शान भी हैं, और इसमें किसी और दिन करें और किसी दिन कर लें। हज़रत इमाम जाफर सादिक के नाम की अगर कोई ईसाले सवाब की सूरत पैदा करनी है तो उनकी विलादत का दिन बहुत मुनासिब है, उनके इंतकाल का दिन बड़ा मुनासिब है, उन दिनों को मुतय्यन कर लिया जाए अगर करना ही है। आपने और बहुत सारे दिन मुतय्यन किए हैं, एक ये दिन भी मुतय्यन कर लें या उस महीने को मुतय्यन कर लें, तो उसमें ज़रा कम अज़ कम ये वसवसा और शक तो नहीं आएगा। कि बहरहाल एहतियात करना चाहिए ऐसे कामों में कि जिसके करना फ़र्ज़ ना हो और न करने में एहतियात हो, और बास के नज़दीक करने में बिदअत और गुमराही का ख़दशा हो, जबकि लोग दीन के सारे रास्ते छोड़कर, फ़राइज़ को छोड़कर, हराम में पड़ के सिर्फ़ इन्हीं शॉर्टकट्स में रह गए हैं, सिर्फ़ रस्मों में, रिवाज के अंदर ही उम्मत फंस के रह गई है। तो इसलिए हमें ज़रा सा सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या हम ज़रूरी है कि इस ज़िद और हठधर्मी पर लगे रहें कि नहीं जनाब हमें ये करना ही करना है, सिर्फ़ इसलिए कि इसको बिदअत करार क्यों दिया गया, अब ये जायज़ ही जायज़ है, कुछ भी हो जाए इसको मनाया जाएगा, बहुत शान से मनाया जाएगा। तो जब एक चीज़ लाजिम नहीं है तो उस पर इतनी सख्ती की क्या ज़रूरत है, इसको किया ही जाए। ज़्यादा एहतमाम इन बातों की तरफ क्यों ना हो कि जिससे माशरे की इस्लाह हो, लोगों की इस्लाह हो, लोगों का ताल्लुक़ में अल्लाह बेहतर हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल हो, ज़िंदगी में हराम कम होता जाए, हलाल बढ़ता जाए, नेकियाँ आएँ, तकवा आए, तो उम्मत इस पर अगर काम करे तो ज़्यादा अहमियत होगी, ज़्यादा तवज्जो होगी, तो उम्मीद है। और इसी तरफ दूसरे लोगों को भी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में आपको क्या ज़रूरत है कि आप बैठ के सुबह शाम फतवे लगाते रहें, छोड़िए उनको, उनके हाल पर, उनके पास अपने उलमा हैं और उनकी दलीलें मौजूद हैं तो वो उस पर अमल करते हैं। आम आदमी इससे बड़ा परेशान हो जाता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो जो समझदार लोग हैं उनको हमारा मशवरा तो ये है कि एहतियातन नहीं करना चाहिए, और कहीं से ऐसी चीज़ें आए तो उनको किसी गरीब को दे दें, खुद ना खाएँ या इस्तेमाल ना करें, और ना जाएँ ऐसी जगह पर। लेकिन कोई ऐसी जगह है जिसको ऐसा करना लाजमी है, उसे घर वाले उससे वो होते हैं, तो उसमें अपनी नीयत को ठीक कर ले कि मैं इसको लाजिम नहीं समझता, मैं इसको दीन का हिस्सा ऐसा नहीं समझता कि इसके बगैर मैं कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, ये लाजमी चीज़ नहीं है कि इसके नतीजे में मेरी मोहब्बत अहले बैत से साबित होगी वरना नहीं होगी, ये ज़रूरी ना समझे कि ऐसा न करने से, अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं कहीं जो है वो अहले सुन्नत वलजमा से बाहर निकल जाऊंगा या बरेलवी मकतब फ़िक्र से बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, खुद बरेलवी उलमा में भी बहुत से ऐसे हैं कि जो ऐसा नहीं करते और उसको मुनासिब नहीं समझते, तो उनका रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। और जैसा कहा कि हनफी फुकहा की तालीम में ये नहीं है कि वो ऐसा किया करते थे, तो बहुत बात की चीज़ है, तो इसीलिए इसमें एहतियात ही बेहतर है। अल्लाह हमें तौफीक दे, और जो कर रहे हैं उनसे आपको लड़ने झगड़ने, दिलों को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नीयतों की इसलाह करके चले। अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए।